సాద్వైతం సావదూతం పరిజనసైతం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణలలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరవ ప్రబృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. यस्टरडे कल हम लोग ओके तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे पतन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन कैसे होता है. ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि प्रणश्यति. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे किसी का जब पतन होता है तो तुरंत होता नहीं है, उसके ऊपर पहले बहुत सारा चीज होते हैं. पहले ध्यान होता है, उसके बाद आसक्ति, आसक्ति से काम भोग करने की इच्छा प्रबल जागृत हो जाती है और उसके बाद क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाता है और उसके बाद उसका पतन होता है. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो वर्णन करते हैं कैसे भक्ति मार्ग अन्य मार्गों से श्रेष्ठ है. पहले भी उन्होंने चर्चा किया था कैसे वो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, बड़े बड़े योगियों का पतन हो गया लेकिन भक्तों का पतन नहीं हुआ. हरिदास ठाकुर का पतन नहीं हुआ, अम्बरीश महाराज का पतन नहीं हुआ, यमुनाचार्य, लेकिन जो योगी लोग हैं उनका पतन हुआ है. कैसे भक्ति मार्ग जो है अन्य मार्गों से श्रेष्ठ है, उसको प्रभुपाद वहां पर जोर दे रहे अपने तात्पर्य में. तो अन्य मार्ग करके विशेष करके योग, अष्टांग योग से कैसे श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग, तो उसको प्रभुपाद समझा रहे. और इस तात्पर्य में प्रभुपाद वो कहते हैं ज्ञान मार्ग से कैसे भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है. ज्ञान मार्ग से भी पतन हो जाता है एक व्यक्ति का. समझ में आ रहा है मैं हम लोग कौन सा तात्पर्य को चर्चा कर रहे हैं अभी, कहाँ पर रुके थे हम लोग? 63 वह श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं. जो इन पर्सन निर्विशेषवादी ज्ञानी होते हैं तो वो लोग, उनका पतन हो जाता है. क्यों पतन होता है? क्योंकि उनको इंद्रियों के लिए कुछ कार्य नहीं रहते, कुछ ऊंचा कार्य नहीं रहते. पहले ही 59th वर्स में श्लोक में भगवान ने कहा है इंद्रियों को जब ऊंचा रस मिल जाता है तो वो निचले रस को त्याग देते हैं. तो जब भक्ति रस का आस्वादन होता है तो ये भौतिक रस को त्याग देते हैं. क्योंकि निराकारवादियों को तो कोई ऊंचा रस नहीं मिलता है, तो उनका क्रिया आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या है? भौतिक कार्यकलापों को बंद करना उनका आध्यात्मिक प्रक्रिया. तो या या निराकार ब्रह्म के बारे में चिंतन मनन करना, लेकिन उसमें ऊंचा रस ना होने के कारण, कुछ रस ना होने के कारण उनको रस नहीं मिलता। तो वो ज्ञानी लोग क्या है, वो फल्गु वैरागी है बोलते प्रॉपर। इस भौतिक जगत को ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ऐसे त्याग देते हैं। उसके कारण प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी व्यक्ति ना मुमुक्ष भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। ऐसे वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ये रूप गोस्वामी के श्लोक है भक्ति रसामृत सिद्धों में, जहाँ पर वो वैराग्य और भक्ति का क्या संबंध है वो वर्णन करते हैं। तो भक्ति में कैसे होता है, युक्त वैराग्य होता है। हम लोगों ने देखा है ना, वैराग्य ज्ञान सब कुछ होता है भक्ति में। भक्ति में युक्त वैराग्य होता है। और निराकारवादी क्या करते हैं, तो फल्गु वैराग्य का पालन करते हैं। फल्गु वैराग्य का अर्थ होता है जो भगवान के सेवा में उपयोग किया जा सकते हैं उनको भौतिक या प्रापंचिक करके उसको त्याग देते हैं। तो प्रापंचिक करके त्याग देते हैं, इसके लिए उसको उनको वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। तो बिहार में एक और नदी है फल्गु नदी, वो ऊपर सिर्फ मिट्टी दिखाई देता है, पानी नहीं दिखाई देता, मिट्टी या कीचड़, लेकिन वहां पर जाएंगे तो अंदर पानी रहता है। तो ऐसे लेकिन इसके विरुद्ध है, ये लोग वैराग्य दिखाते हैं लेकिन वास्तव में उनके अंदर वैराग्य नहीं रहता। क्योंकि अंत में वैराग्य क्या क्या परिभाषा है, हम लोग क्या वैराग्य कर सकते हैं, क्या हम लोग त्याग सकते हैं, तो हमारा कुछ है क्या त्यागने के लिए, है ना। तो हम लोगों को कुछ त्यागने के लिए कोई, वो भी भगवान ने दिया, नहीं तो वो भी नहीं रहता था, फ्री विल भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सब कुछ भगवान का है, इसके कारण कुछ त्यागने का कोई चीज ही नहीं रहता है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो प्रभुपाद वो रूप गोस्वामी का जो श्लोक है ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, तो उसमें उत्साह का परिभाषा क्या देते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, उसको उत्साह कहते हैं, वही युक्त वैराग्य है। लेकिन वो युक्त वैराग्य के जो परिभाषा है, ये एक श्लोक है फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य के बारे में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यतारम उपयुञ्जता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्छते। कोई विषय वस्तु के प्रति अनासक्त हुए बिना, आसक्त हुए बिना, हमारा परिभाषा युक्त वैराग्य क्या क्या है, कोई विषय वस्तु से अनासक्त हुए बिना, समझ में आ रहा है यह हमारा परिभाषा है लेकिन रूप गोस्वामी का वो परिभाषा नहीं था। तो अनासक्तस्य विषयान, वो अनासक्त होकर विषय वस्तुओं के प्रति, इस भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति यथारम उपयुञ्जता, जितना हमारा योग्यता है, यथा अर्म जितना हमारा योग्यता है, या जिस हद तक हमारे भक्ति के लिए वो अनुकूल कारक है, वो यथारम शब्द का अर्थ है, उसके अनुसार हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लगाना चाहिए, वो ऐसा नहीं बता रहे। अनासक्त से पहले अनासक्ति होना चाहिए। तो कैसे समझना है ये अनासक्ति या आसक्ति, एक बार एक वक्त बता रहे थे उनको, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए उनको उनके गुरु ने आदेश दिया, कृष्ण भावनामृत के बारे में ऐसे निबंध लिखने के लिए। तो ये भक्त ने क्या किया, कैसे लिखा जाता है वो समझना तो चाहिए ना पहले, तो इसलिए वो न्यूज़पेपर मंगा लेने गए हर रोज। तो न्यूज़पेपर आप जानते हैं ना, फजल को कुछ नहीं है, वो दुनिया का सब बकवास की बात है। कोई हम कल बता रहे थे ना, कोई स्त्री किसी लड़के से भाग गया, ऐसा ऐसा कुछ लिख रहा है, तो सब बकवास की बातें हैं। तो ये भक्त मंगाने लगे, फिर उसको पढ़ने लगे, तो ऐसे कई महीनों चले गए। हर रोज वो ये न्यूज़पेपर पढ़ते घंटों चला जाता था पढ़ते पढ़ते पढ़ते। और एक दिन, क्योंकि उनका सेवा था, उनको समझना था कैसे तो लिखना चाहिए करके, है ना, तो सेवा के माध्यम से दृष्टिकोण से। और एक दिन वो न्यूज़पेपर वाला लेट आ गया, तो इनको बहुत विचलित हो गए, क्यों लेट आया करके। तो तब इनको महसूस हुआ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में आसक्त हो गया हूँ करके, तब उन्होंने बंद कर दिया उसको। तो ये आसक्ति है, तो हमें उसको समझना चाहिए कैसे होता है आसक्ति करके चीजों के साथ, अनासक्ति का क्या अर्थ है। तो ये अनास को हम लोग कभी और चर्चा करेंगे उसको, तो ये युक्त वैराग्य क्या है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उसको सभी अंधाधुंध भगवान की सेवा में, जो भी मार्केट में आता है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे करके, वैसे नहीं, उसको क्वालिफाई भी किया गया, अनासक्तस्य विषयान यथारम्भ उपयुंजता। पहले आधा भाग तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन। तो आजकल युक्त वैराग्य के नाम पर हम लोग कुछ भी लगाते हैं। यहाँ पर भी प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, जो निराकारवादी निर्विशेषवादी होते हैं वो लोग वो लोग क्या करते हैं, जो कोई भी अन्न है अन्न को वो त्याग देते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन को खाने के बजाय वो त्याग देते हैं। भौतिकवादी लोग अच्छे अच्छे व्यंजन में खाने में लगे रहते हैं, भक्त उसी को भगवान को अर्पित करके उसको सेवन करते हैं, तो इसलिए उनको ऊंचा रस मिलता है, इसलिए उनका पतन नहीं होता है। लेकिन जो निराकारवादियों का पतन हो जाता है, क्योंकि उनको ऊंचा रस नहीं रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं यहाँ पर, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त, क्योंकि वो भगवान का भक्ति नहीं करते, वो भगवान चीजों को भगवान की सेवा में लगा के वो स्वीकार नहीं करते प्रसाद के रूप में, तो इसलिए उनका पतन हो जाता है। यहाँ पर अंत में वो कह रहे हैं कि कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंचे जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो ये निराकारवादी है, सो निर्विशेषवादी है वो लोग। वो श्लोक है ना, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धये आरोह कृष्णेन परम पदम तथा पतंत्यदो नादृत यस्मदंग्रयः। ये श्लोक गर्भस्तुति में आता है, जब देवी देवता लोग वो भगवान को, जब देवकी के गर्भ में थे तो प्रार्थनाएं अर्पण किया उन्होंने उस जेल में, कंस के जेल में आकर, तो रात के समय, तो तब ये श्लोक कहते हैं वो लोग। और वो कह रहे हैं ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, वो अरविंदाक्ष अरविंद के समान, कमल के समान नयन वाले, तो कुछ लोग है ये अन्य, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये, क्योंकि उनका बुद्धि अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, मन और बुद्धि, उसके कारण आरोह कृष्णेन परम पदम तथा, वो परम पद को प्राप्त होने के बाद भी, मतलब आध्यात्मिक स्तर मुक्ति के स्तर को प्राप्त करने के बाद भी, क्या करते हैं, पतंत्यदो नाद्रता युष्मदंग्रयः, उनका पतन हो जाता है। क्यों पतन होता है, ना आद्रतो युष्मदंग्रयः, आपकी चरणों के प्रति उनका आदर भावना नहीं रहता, इसके कारण उनका पतन हो जाता है। ऐसे ये निर्विशेषवादियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि भगवान का भक्ति नहीं करते वो लोग। लेकिन भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ भगवान को अर्पित करके स्वीकार कर, यहाँ पर प्रॉपर प्रसाद के बारे में उदाहरण दे रहा है। तो निराकारवादी वो सब निर्विशेषवादी वो लोग ऐसे अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये सब माया है। लेकिन भक्त लोग उसी को भगवान को अर्पण करके वो स्वीकार करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी बताया ना, भगवान के लिए हमें अच्छा देना चाहिए और हमारे लिए सरल होना चाहिए, ऐसे भी बताया ना प्रभुपाद जी ने, है कि ना। हम भगवान को अच्छा अच्छा करके बना के अर्पण करके हम लोग खाने की इच्छा से वो अर्पण नहीं करना चाहिए, वो भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको अर्पण करना चाहिए, ठीक है। एकाध बार जैसे कल फीस्ट था, जैसे एकाध बार ठीक है, या संडे संडे ऐसे कुछ फेस्टिवल संडे। हर रोज ऐसे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा से भगवान को अर्पित, वो नहीं। इसलिए युक्त वैराग्य भी क्या किया गया, उसको नियमित किया गया, रिस्ट्रिक्शन बंद निर्बंधित किया गया, क्या है, बंधित किया गया, निर्बंधित रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन बंधित किया गया, तो उसको भी बंधित किया गया है ना। तो प्रसाद है करके वो हम लोग ज्यादा भी नहीं खा सकते, हम लोग मॉडरेटली खाना चाहिए, जितना जरूरी है हमारे सेवा के लिए वैसे। तो ये सब नियम होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इंद्रिय प्रबल हो गए तो भक्ति में भी पतन हो सकता है कि नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सन्यासी शिष्यों को निंदा किया करते थे ना, उनको डांटा करते थे वो, तो थोड़ा उनका वेट बढ़ गया तो क्या करते थे, उनको डांट देते थे, ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा सो रहे हो, ऐसे डांटते थे उनको, ठीक है। तो अगला श्लोक लेंगे, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्च आत्मनश्यन्ति देहात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्च चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो कौन भगवान की कृपा पात्र हो सकते हैं, ये इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो कौन, क्या क्या लक्षण उसके दिखाई दे रहे, वो पहले राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना चाहिए, संयमित करना चाहिए, और आत्मवश या उनको वश में करना चाहिए, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश। तो चार लक्षण कौन कौन से है बताए जल्दी जल्दी। तो पहले है राग द्वेष विमुक्तैस्तु, और राग और द्वेष आसक्ति और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। विषयान इंद्रिय शरण विषय, उसको इंद्रिय विषयों को भोगना नहीं चाहिए। विषयान इंद्रिय शरण मतलब दूसरा है, तीसरा है आत्मवश्य, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। चौथा है विधेयात्मा, विधेयात्मा मतलब नियमित स्वाधीनता पालक। तो इसका अर्थ है भक्ति के नियमों को, विधियों को पालन करना चाहिए, योग के विधियों को पालन करना चाहिए। तो ये सब चार लक्षण होते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो कौन कौन सा कहाँ पर बताया गया है, ये पहले ही बताया गया है ऐसे बोल रहे हैं ना प्रभुपाद, कहाँ पर बताया गया है जल्दी बताइए। विषया विनिवर्तन थे और उसके अगले का श्लोक, दोनों को श्लोक के मिला के यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद। विषया विनिवर्तन थे निराहारस्य 59 और 60, विषया विनिवर्तन थे निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसौतस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रथमं मम। इन श्लोकों का आपको अर्थ पता है ना, है कि नहीं, आपने याद किया ना ये सब श्लोक अभी। तो विषय वस्तुओं को बंद करके सिर्फ बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण करने से उनको भोग करने का रस अभी भी रहता है। जब वो ऊंचा रस प्राप्त हो जाता है तो वो त्याग सकता है, नहीं तो यततो अपि कौन्तेय, प्रयास करने के बाद भी इंद्रियों को निग्रह करने के लिए फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका भी इंद्रियां उनको हरण करके चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं। और इसके बाद प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में इन चार चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखाई दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं रहता। ये विषयान इंद्रिय विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण का वर्णन आता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं, अतः वह आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है ना, राग द्वेष विमुक्त है कि नहीं। वो विमुक्त शब्द दोनों को लागू होता है। कुछ कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता था। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। इसका अर्थ आत्मवश्य, समझ में आ गया। और विधेयात्मा का यही चेतना भगवान की अहित की कृपा, क्योंकि विधेयात्मा मतलब भगवान की सेवा में कृष्ण भावना भावित में अपने आप को लगाना, तो इसके कारण प्रसादम अधिगच्छति, यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है जिसके प्रति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो भक्तों के ऊपर विशेष करके भगवान का बहुत ही कृपा रहता है, तो प्रसाद हम अधिगच्छति, इसलिए उनको अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं वो। अगला श्लोक, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरशोपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिर् पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार की तीन तापों को ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शक्ति की कोई संभावना नहीं है। सॉरी शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ पर नास्ति बुद्धिर इसका अर्थ है ऐसे उन्होंने व्यवसायत्मिक बुद्धि को प्राप्त नहीं किया है और भगवान की या ऐसे बुद्धि योग में नहीं लगा हुआ है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य तो उसका भावना कैसे शुद्ध रहता है, मन कैसे शुद्ध हो सकता है। तो मन शुद्ध हुए बिना उसके शांति कैसे आता है। इसका अर्थ क्या होता है, जब तक मन में इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं रहते हैं तब तक हम लोग शांत नहीं रह सकते, हमेशा विचलित रहते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, लोग ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहते हैं, है ना, आश्रम में भी ऐसे अनुभव होता है ना हम लोगों को। तो उसका कारण क्या है, वो मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं और हमारे अंदर चिंता भय ये सब क्यों उत्पन्न आता है, क्योंकि भौतिक इच्छा के कारण। सो अशांति हो जाता है। तो जब मन शुद्ध नहीं रहता शांत हो जाते हैं हम लोग, विचलित हो जाते हैं, बहुत सारे चिंताएं आ जाते हैं। तो जब मन अशांत रहता है तो कुतः सुखम, कहाँ पर सुख रहेगा, है कि नहीं। तो लोग सोचते हैं दुनिया में कि बहुत सारे ऐसे इंद्रिय भोग के वस्तुओं को इकट्ठा करने से, जो भी कारखाने में या शॉपिंग मॉल में आता है उसको इकट्ठा करने से हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब तक उनका मन शुद्ध नहीं रहता है तो कैसे सुखी होंगे। ये है या नहीं है, सुख क्या है वो मन का स्थिति है, वो मन का, इट्स अ स्टेट ऑफ द माइंड, समझ में आ रहा है। तो अशांत से कुछ सुख, वो मन ही अशांत है, मन ही शुद्ध नहीं है तो वो लोगों को कैसे सुख प्राप्त होगा। मुक्ति, व्हाट इज दैट, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। काम जब वासनाएं रहते हैं, बौद्धिक इच्छाएं रहते हैं तो वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। मुक्ति और भुक्ति का भी इच्छा है तो भी शांत नहीं, मुक्ति का भी इच्छा है तो भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए जो निर्विशेषवादी शांत नहीं हो सकते, अंत में अशांति रहेंगे। हालांकि बाहर से शांति शांति ही शांति ही ओम शांति ही बोलेंगे, लेकिन अशांति ही रहेंगे अंदर। तो ऐसे लोगों को कतक कुतः सुखम, बाहर के ऐसे कई सारे चीजों को हम लोग इकट्ठा किया लेकिन फिर भी मन अशांत है तो कैसे सुख होगा। भौतिकवादी लोग है, आधुनिक जमाने में ऐसा ही है, कितने सारे मानसिक रोग हो रहे हैं लोगों को, कितना विचलित है, इम्बैलेंस्ड पीपल, है ना, इम्बैलेंस्ड। आधुनिक विश्वविद्यालय में भी ऐसे होता है, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को लोग आते हैं उससे, लेकिन वो सब लोग इम्बैलेंस्ड रहते हैं, अशांत या असंतुलित रहते हैं वो लोग। तो इसलिए पहले शांति, उसके लिए हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, क्योंकि यहाँ आरंभ कैसे होता है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, वहाँ से आरंभ होता है, जिसको बुद्धि नहीं है, व्यवसाय आत्मी का बुद्धि नहीं है, अयुक्त है, भक्ति सेवा में नहीं लगा है। तो भक्ति सेवा में कैसे व्यवसाय आत्मी का बुद्धि आता है, जब हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान होता है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, श्रद्धा कैसे बढ़ती है, हम ये शास्त्रों का ज्ञान होता है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो श्लोक उल्लेख कर रहे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, सभी यज्ञ और तपस्या का जो फल है उसको वही भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम सभी लोकों का वही स्वामी है, सर्वोच्च स्वामी है। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों को वो सुहृत है। सभी एक व्यक्ति ज्ञातवा माम शांति मृत्य, भगवान कह रहे हैं ऐसे जो मुझे जानते हैं वही लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान बता रहे हैं। सो हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वही भुक्ता है, हम लोग भुक्ता बनाना चाहते हैं या हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं, हम लोग दूसरों का हितचिंतक बनना चाहते हैं या दूसरों को हम लोग हमारा हितचिंतक मानते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आजकल ये लोग सोचता है हम लोग इस पार्टी को लेकर आएंगे हमारा हित होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। हमें नरेंद्र मोदी को लेकर आएंगे तभी हित होगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब तक हम लोग कृष्ण को लेकर नहीं आएंगे तब तक कोई हित नहीं होने वाला, तब तक कोई शांति नहीं होने वाला। तो कृष्ण को जानने से क्या हो जाता है, हम लोग भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति में लगने के कारण हमारे इच्छाएं भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं को मुक्त होने से हम लोग शांति को प्राप्त करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना, मुझे जान के वो मेरे भक्ति में लग जाता है। महात्मा अनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति मात्रिता भजन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मामवे। भजन अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन क्यों करता है, मैं मुझे जानता है कि सभी जीवों का मही स्त्रोत हो ज्ञात्मा और सभी लोगों का मही स्त्रोत हो और अव्य अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। तो जो जानते हैं इसको भाव पूर्वक मेरा भक्ति सेवा करते हैं। तो भगवान को जानने से हमें ऐसे व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि प्राप्त होता है, वो श्रद्धा प्राप्त होता है, उसके कारण हम लोग भक्ति में या योग में लग जाएंगे, बुद्धि योग में। उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे भावना शुद्ध हो जाता है। भावना शुद्ध होने से शांति प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होने से सुख प्राप्त होता है। इसके तद्विरुद्ध जो भगवान को नहीं जानते हैं उनको शांति नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वो भी कहते हैं अपने लेक्चर में, आज सभी लोग दुनिया में सुख और शांति चाहते हैं लेकिन कोई भी इंद्रियों को निग्रह नहीं करना चाहता। इंद्रियों को कोई भी बंधन बिना वो लगाना चाहते इंद्रिय भोग में, और साथ साथ वो चाहते हैं हमें सुख और शांति मिलना चाहिए। वो कैसे होता है दोनों, है कि नहीं, दोनों कैसे होता है, होगा नहीं ना। तो इसलिए हमें तो ये नहीं होगा। सी यू शुड रीड द प्रोपर्ट्स बट यू शुड बी ऑलवेज रेडी बिकॉज टू सेव टाइम वी हैव टू सेव टाइम सो यू रीड बिकॉज दे राइट इट एंड दे डोंट राइट इट या रीड फास्ट। इसका चर्चा कर रहे हैं हमें पता है ना, you wasted another 2-3 minutes mind
krishna bhavana mein koi bina shanti ki koi sambhavna nahi ho sakti tatha paanchve adhyay mein isme kuch bhi nahi jab manushya ye samajh leta hai krishna ki yagya aur tapasya ke uttam phalon ke ekmatra bhokta hai aur samast brahmand ke swami hai tatha ve samast jeev ke asli mitra hai tabhi use vaste shanti milti hai tatha yadi koi krishna bhav भावना भावित नहीं तो उसके मन को कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मन की दुर्बलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि उसने भोग का स्वामी और सबके भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है निश्चय ही सदा अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है निश्चय सदा सुखी सदा दुखी और शांत रहना अरे तो जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों रहता है।
हाँ ये एक पॉइंट है, कभी कभी लोग बहुत दिखाया हुआ प्रकट है ना, शांति और सुख का दिखावा करते हैं लोग, सब शांति शांति बोलते भी हैं पर उसके बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन जब तक भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होते हैं या भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में नहीं लगते हैं उनको शांति भगवद गीता के अनुसार उनको कभी शांति नहीं मिलने वाला। वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले ओम शांति करके है ना, तो कभी होने वाला नहीं। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे उनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे हम लोग, तीसरे अध्याय के आरंभ में बहुत चर्चा करने वाले। वहाँ पर एक डॉक्टर मिश्रा करके थे, वो क्या भारत से एक्चुअली वो वो डॉक्टर थे वो, और वहाँ पर शायद पढ़ाई के लिए गए थे और वहीं पर प्रैक्टिस भी शुरू किया, लेकिन वो बाद में गुरुजी बन गए, वो सब योगा वगैरह सिखाने लगे ना, और वेदांत के ऊपर प्रवचन भी देते थे, लोग उनको गुरुजी गुरुजी करके समझते थे। पर सिर्फ ये क्या है, प्रभुपाद बोले दिखावा है सब, बहुत अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगत बहुत बड़ा विद्वान दिखावा करता था। तो प्रभुपाद जी उनके साथ रहे कुछ समय के लिए आरंभ में, क्योंकि प्रभुपाद जी को कोई रहने का स्थान भी नहीं था अमेरिका में, तो ऐसे लोग दिखावा करता है गुरु बन के जाता है वो पाश्चात्य देश में। तो यहाँ पर बोल रहे कितना भी शांति, वो लोग सेंटिमेंटल अमेरिकन उसके पास आते थे, वो बहुत आई एम एक्सपीरियंसिंग पीस, मुझे बहुत शांति का महसूस हो रहा है, ऐसे लोग वो लोग वो भी दिखावा करते थे उसके साथ साथ, उनको मिलता होगा क्योंकि इतना भोग करके शरीर इतना भारी हो गया, थोड़ा ऐसा योगा हिला जुला दिया तो थोड़ा ऐसा होता है ना, थोड़ा हिला दिया तो पहली बार जब आपने जिस दिन ऐसे अनुभव हुआ होगा ना, जिस दिन योगा किया आपने, क्योंकि शरीर वो इतना रिजिड हो जाता है ना, थोड़ा हिला दिया तो लूज हो जाता है। तो ऐसे वो लोग दिखावा करते हैं, वो ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। या या ये बहुत महत्वपूर्ण, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, आपको शांति का महसूस होगा धीरे 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 धीरे, शांति स्वतंत्रता आनंद सभी चीज महसूस होगा। तो उस दिन हम बता रहे थे ना स्वतंत्रता के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक वो इंद्रियों के दास है, इंद्रिय कैसे वो स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे वो लोग। जब हम लोग इंद्रियों के ऊपर और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे तभी हम लोग ये स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, शांति स्वतंत्रता सुख और सब कुछ अनुभव होगा। ये सब दुनिया में इसके नाम पर जो भी चल रहा है वो सब क्या है, बकवास है बस। तथाकथित जो आध्यात्मिक संस्थाएं आध्यात्मिक गुरु सो सब बकवास है, सब दिखावा है वो सब। कृष्ण भावनामृत के बिना कोई शांति नहीं होगा। इंद्रियाणां हि चरतां यन्न तदस्य हरति प्रज्ञा वायो नावामिव वसि। पिछले कौन सा था, 67 और 66? अभी 67। जिस प्रकार पानी की तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई भी एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य को बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कैसे एक भी इंद्रिया युक्त नहीं है तो क्या हो जाता है, उसको हर के लेके जाते। यहाँ पर भगवान, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना एकांग भक्ति और बहुअंग भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बहुअंग भक्ति का महत्व यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। कैसे सभी इंद्रियों के लिए एंगेजमेंट चाहिए। मैं दिन भर ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे होता नहीं है। आप प्रभुपाद बोलते थे खाओगे पियोगे सोओगे और स्त्री के ऊपर ध्यान करोगे और पतन होके चला जाओगे, ऐसे बोलते थे। कोई कोई लोग राधा कुंड में, वो विशेष करके एक भक्त के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, राधा कुंड में जाके वो कुछ पढ़ाई करना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने बोला तुम खाओगे और सोओगे और महिला के ऊपर ध्यान करोगे, स्त्री के ऊपर और पतन होके चले जाओगे, ऐसे बोले। तो सभी इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए, पूरी तरह से सबको हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी नहीं तो एक भी इंद्रिया हमें हरण करके चले जाएगा हमारा बुद्धि को, ऐसे यहाँ पर तो भगवान बता रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे यही सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना वही सही मार्ग है इंद्रियों को वश में करने के लिए। यदि समस्त इंद्रिया भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपने तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करना ही यही सही एवं सरल विधि है। मतलब कैसे होता है, ये हमारे मन है और इसके इर्द गिर्द क्या है, इंद्रियां है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठानम मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान 15वें अध्याय में बोल रहे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, ऐसे ये सभी इंद्रियां क्या है, मन के इर्द गिर्द है। रसनम ग्राणमेव च, तो 5.15.9 और समथिंग 8 or 9 है। श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठायाम अधिष्ठानाम मनश्चाहम, तो वो कहाँ पर स्थित है, मन के इर्द गिर्द स्थित है। तो मन एक के ऊपर ध्यान किया तो एक के साथ वो लगा रहा तो क्या हो जाता है, वही इंद्रिया हमको हरण करके चला जाता है, तो है ना। तो वो मन और इंद्रिया ये शरीर को उपनिषदों में क्या तुलना किया गया है, उपनिषदों में एक रथ से तुलना किया गया, रथ को ये जो हाथियां है जो घोड़े हैं वो खींच के लेके चलते हैं, घोड़ों को किससे तुलना किया, इंद्रियों से तुलना किया गया, और जो रस्सी है वो मन से तुलना किया गया। जब रस्सी या बुद्धि ठीक नहीं है और रस्सी को खींच नहीं रहा है तो एक कोई और सभी जो अलग अलग दिशा में खींच रहे और जिसके ऊपर थोड़ा लूज है कोई जो क्या है वो घोड़े जो घोड़ा जिस घोड़े को थोड़ा लूज दिया जाता है उस घोड़ा क्या करता है लोगों को हरण करके लेके जाता है, चला जाता है। इसलिए सभी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी एक को चांस दिया तो वो लेकर चले जाएंगे, ठीक है। और पहले जमाने में ऐसे नाम हुआ करते थे, ऐसे नाव हुआ करते थे, कैसे पता है, वो हवा के द्वारा वो चलते थे, वो आप जानते हैं ना उस ऐसा कुछ रैडर क्या बोलते हैं उसको, सेल सेल हुआ करता था, ऐसे कपड़े के जैसे होता था। और यू डोंट नो दैट या शिप्स, तो ऐसे हुआ करता था। और वो हवा की दिशा से किस दिशा में जाना चाहिए उसको ऐसे वो ये करते थे, उसको बदलते थे उसका दिशा, उसके अनुसार वो भी चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हवा तेजी से आ गया तो उसको खींच कर चला जाता है। तो अभी मोटर अभी कैसे चलते हैं, अभी मशीन के ऊपर चलते होंगे ना, घोड़े बनने। समुद्र में कोई तिमिंगल या मछली बनने के लिए ये सब तैयार किया गया। क्यों ये सब करना चाहिए, एक देश से दूसरे देश तक जहाँ लोग हैं दुनिया में, ये सब जरूरत नहीं है ना। तो अगला श्लोक, तस्मान तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो किसके बुद्धि, अतः मतलब अभी ये प्रश्न का उत्तर उत्तर के अंत में बोल रहे हैं। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने विषयों से सब प्रकार से विरत है, तो तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशा इंद्रियानिन्द्रियेषु आर्तेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसकी प्रज्ञा क्या है, प्रतिष्ठित है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्ण बाणामृत में है, जो उन्हीं वही इंद्रियों के ऊपर काबू कर सकते हैं। इंद्रियां सिर्फ कृष्ण बाणामृत में लग के ही दमित किया जा सकता है। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, कृष्ण बाणामृत के बिना वो हो ही नहीं सकता। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है ना, बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के बारे में वगैरह। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ होता है, कृष्ण भावनामृत में जो इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे, इंद्रियों को निग्रह नहीं कर पा रहे, वो क्या करना चाहिए, वो कमांडर के पास जाके और सेवा लेना चाहिए, बस तब इंद्रियां निग्रहित हो जाएंगे। महाजेंद्र को खुशी हो जाएंगे, अब मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं ऐसे। तो कृष्ण भावनामृत में तो हमारे इंद्रियां सब लग जाते हैं भगवान की सेवा में, इसलिए उनको निग्रह करने की समस्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इंद्रियों को निग्रह नहीं करते, हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो अन्य योगी है, ज्ञान योगी या अष्टांग योगी, वो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को निग्रह करते हैं उनको। हम लोग निग्रह करने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उसको, और भगवान उनको निग्रह करते हैं। वास्तव में अंत में हम लोगों के पास वो शक्यता नहीं है इंद्रियों को निग्रह करने के लिए, तो भगवान वो उसको निग्रह कर सकते हैं उनको, इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। तो इंद्रियों के जो स्वामी हैं, भक्तों को अपने शरणागत के अनुसार, शरणागति के अनुसार, उनके शरणागति के अनुसार वो उनकी इंद्रियों को मन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे इंद्रियों के ऊपर काबू होता है। सो हम लोग आप वो श्लोक देखेंगे, पहला श्लोक उपदेश अमृत का, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम गीतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम का अर्थ ये नहीं बोल रहे आपकी मौन बाबा बन जाओ, है ना, क्या बोल रहे प्रभुपाद, आप भगवान के बारे में बोलिए बोल रहे, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना है, वो हम लोग ऐसे ही हम लोग इंद्रियों को निग्रह करते हैं। तो मतलब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग इंद्रियों को निग्रह नहीं करते, हम लोग उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे अपने आप क्या हो जाते हैं, वो ग्रहित हो जाते हैं, दमित हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कृष्ण बालामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति के बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं है, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो ये उदाहरण दे रहे, सेना के ऊपर जीत हासिल करने के लिए एक श्रेष्ठ दर्जे का शक्ति चाहिए, या शत्रुओं के ऊपर हमारा शक्ति और ज्यादा होना चाहिए। तो जब भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो और कौन सा शक्ति होगा इस दुनिया में, और कौन सा काम क्रोध, ये तो ये भी शत्रु है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हृदय में ये शत्रु है, हमारे अंदर ही है ये शत्रु। हम लोग कभी कभी बाहर के शत्रुओं के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन ये शत्रु तो अंदर ही है, तो इनको कैसे हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। तो भगवान के सहायता लेकर, भगवान की सेवा में लगकर, और भगवान से बढ़कर और कोई शत्रु शक्तिशाली है क्या? नहीं है। ईसाई धर्म में ऐसे होता है, शैतान करके उनका एक धारणा है, एक व्यक्ति है शैतान, वो भगवान से क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं। हम लोग भगवान को वोट देकर, दैट मीन्स उनका सेवा करके भगवान को वोट दे रहे हैं, इससे वो शक्तिशाली हो जाते हैं और शैतान को हराते हैं, ऐसे होते हैं। और भगवान इसके विरुद्ध क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसे चीज प्रदान करते हैं, हाँ वर प्रदान करते हैं, ऐसे उनकी धारणा, ये सब बकवास की धारणा है ना। तो भगवान का कोई स्पर्धालु नहीं हो सकते, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, उनका कोई तुलना नहीं सकते, वो सर्वोच्च व्यक्ति है ना। गॉड मतलब सुप्रीम बींग, असमाऊर्ध्व, उनका कोई समान नहीं है, उनकी ऊंचा नहीं है। तो जो व्यक्ति वह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और यह और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। वो कैसे होता है, गुरु के मार्गदर्शन में हम लोगों को ये सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आगे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सानिशा पश्यतु। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य तो यहाँ पर, जाने से पहले यहाँ पर जो भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी, या भौतिकवादी और भक्त के कार्यकलापों के बीच में अंतर क्या है, ऐसे वर्णन कर रहे भगवान। सो ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहे भगवान। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग कह नहीं सकते ऐसे करके, लेकिन भगवान यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। तो तो ये दिन और रात के समान है, उनके दोनों के कार्य एक समान नहीं चलते, ऐसे पैरेलल लाइंस कहते हैं ना, वो समांतर रेखाएं बोलते हैं कि नहीं, तो ऐसे नहीं चलते उनके दोनों कार्यकलाप, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। प्रभुपाद जी इंद्र तृप्ति के बारे में कहा करते थे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन दे गो इल टुगेदर, ऐसे तद विरुद्ध जाते हैं वो। ऐसे भौतिक व्यक्तियों का कार्यकलाप और भक्तों का कार्यकलाप क्या है, तद विरुद्ध जाते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब भक्त लोग सोते हैं वो लोग उठ जाते हैं, और वो लोग सोते हैं तो भक्त लोग सो जाते हैं, ऐसे भी होता है कभी कभी, जब हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं तो वो लोग सोते हैं, वो लोग ऐसे भी होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है उनके कार्यकलाप तद विरुद्ध है। भौतिकवादी लोग भक्तों को क्या करते हैं, पागल कहते हैं, और भक्त लोग भौतिकवादी लोगों को पागल कहते हैं। तो पागल तो होना ही है, भौतिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टि, ये लोग पागल है ना, भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। हम लोग कृष्ण के पीछे पागल है, चैतन्य महाप्रभु अपने आप को पागल मानते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का पागल संप्रदाय है, कृष्ण की के पीछे पागल होना, तो रहना ही पड़ेगा। तो ये जो विवाद है, भक्त लोग पागल है और भौतिकवादी लोग पागल है, कौन पागल है, ये बहुत बड़ा विवाद बन गए जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में प्रचार करने लगे। तो उस समय क्योंकि भक्त लोग पाश्चात्य देश में तो ऐसे चीज ये सामान्य नहीं है, ऐसे सर मंडन करना, भारत में ऐसे होता है, और ऐसे कपड़े पहनना। और वो लोग सोचते थे, वो लोग कहते थे, क्या तुम ये बेडशीट पहन के खड़े हो या बैठे हो, क्यों ये कुछ मट्टी हो अपने सर के ऊपर लगाए हो, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते थे तो भक्तों को, यू आर क्रेजी ऐसे बोलते थे वो, तुम मांस नहीं खाते हो, स्त्रियों का संग नहीं करते हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये सब अगर नहीं करते हो तो तुम क्या हो, पागल हो ऐसे कहते। लेकिन भक्त लोग उनको पागल कहते थे। लेकिन अंत में कौन पागल है, जो भौतिकवादी लोग क्या है, वो पागल है। वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे व्यभिचार करके, मांस भक्षण करके, इंद्रिय भोग करके हम लोग सुखी हो जाए। वो पागल ऊंट की तरह है। ऊंट क्या करता है, वो कांटे वाला जो कैक्टस है वो पत्ते खाता है, और कांटे उसके जीभ को चुभती है। चुभने से क्या होता है, रक्त बाहर आता है, और रक्त से मिश्रित वो कांटे को जब खाता है तो उसको लगता है कि बहुत ही रुचिकर है करता। सो वैसे ही भौतिकवादी लोग इंद्रिय भोग करके अपना बहुत सारे रक्त को खो रहे हैं, खून को खो रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यही आनंद है। जैसे मैथुन का सुख आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है, तो एक बूंद जो वीर्य है वो 60 या 80 बूंद खून से बनता है, और एक बार ये लोग मैथुन करते हैं तो बहुत सारे बूंद वीर्य को गवा देते हैं। इसका अर्थ है कितने सारे बूंद रक्त, सैकड़ों बूंद रक्त को खो देते हैं लोग, और इसको आनंद सोचते हैं लोग, और उसको करने के लिए दिन भर मेहनत भी करना है, पसीने के द्वारा वो रक्त खोते हैं लोग। तो ऐसे दिन रात अपने रक्त को खो के वो सोचते हैं कि हम सुखी हैं। ये ऊंट का लक्षण है। ये ऊंट क्या होता है, वो तमोगुण का पशु होता है, अंधकार का, अज्ञान का पशु होता है। तो ये भौतिक जगत का सुख है, अज्ञान और अंधकार है, ज्ञान के आधार पर नहीं है। लोगों को पता नहीं है क्या सुख है का। तो ये अंतर है भौतिकवादी और आध्यात्मवादी। तो भौतिकवादी लोग वास्तव में वो मूर्ख है, पागल है वो। आजकल तो विकृत 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 होते होते और पागलपन की कोई सीमा ही नहीं है, है ना। होमोसेक्सुअलिटी क्या क्या नहीं करते लोग, है ना, दुनिया में क्या क्या नहीं करते। सुअर की तरह कौन माँ है, कौन क्या है, बहन है, कौन पुत्री है, कुछ नहीं है। तो जिसको भी देखे उसके ऊपर कूद जाना है। तो ये भौतिकवादी लोग पूरा पागल हो गया, बहुत ही पागल, मतलब पागल हो गया। तो सुअर की तरह, ठीक है। तो ये, और कभी कभी ये तो अमेरिका में हुआ, अभी भी भारत में जब युवा लड़के कॉलेज के विद्यार्थी वगैरह जब कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेते हैं तो उनके माता पिता सोचते हैं इसका साइकोलॉजिकली कुछ हो गया करके ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं पाते हो। ये दिन और रात के समान है, भक्ति का जीवन और भौतिकवादियों का जीवन दिन और रात के समान है, उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वो लोग कभी कभी सोचते हैं हम इसको अस्पताल लेकर जाएंगे, ऐसे मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाएंगे, हाँ ऐसे कहते रहते हैं। तो लेकिन जो अध्यात्मवादी है इसको परवाह किए बिना अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। ओके, बड़ा चलती
विद्वान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी का मनुष्य तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मज्ञानी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के तहत विचारवान पुरुष पुरुषों या आत्म के विषय उन्हीं के कार्य भौतिकता में नहीं पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञ अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति खोए रहते हैं। आत्म में निश्चित मन भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। उन्हीं को आध्यात्मिक अनुशीलन कभी उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात के प्रति आत्म साक्षात्कार के प्रति स्वयं है कि अनेक प्रकार के अंगीय सुखों का कभी मिलता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनस रहता है, वे भौतिक हाथों से आवृत रहकर आत्म साक्षात के कार्य
आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वो जो सब पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाले, ये हमारे हृदय को समुद्र से तुलना की गई और जो इंद्रियों का ये इंद्रिय वासनाओं का है तो या इच्छाओं का भौतिक इच्छाओं का जो प्रवेश करना है वो कैसे है, नदियां इस समुद्र में प्रवेश करने से तुलना की गई। और कैसे नदियां प्रवेश करती है, बहुत जोरदार से प्रवेश करते हैं ना, वैसे ही भौतिक इच्छाएं बहुत जोरदार से आ जाते है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं कैसे आते हैं हृदय में भौतिक इच्छाएं, तो उनको रोक पाना कितना मुश्किल हो जाता है। नदियों को रोकना मुझे आसान नहीं है। तो इसलिए वो हृदय में ऐसे जोर से प्रवेश करते हैं। मेरा भी तो इनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर अंत में कह रहे सशांति मापनोती न काम कामी, ऐसा व्यक्ति ही जो विचलित नहीं होता है जैसे समुन्द्र के समान रहता है तो उसका हृदय तो क्या हो जाता है, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने 66वां श्लोक में भी देखा कौन शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी जिसका मन शुद्ध है इच्छाओं से मुक्त है। तो ये व्यक्ति अभी इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। वहां पर 66वां श्लोक में भावना शुद्ध था, मन शुद्ध हो गया था भौतिक इच्छाओं के वो ये बुद्धि योग में लगने के कारण, योग में लग भक्ति में लगने के कारण। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति का इच्छाओं से पूर्ण मुक्त नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी इच्छाएं हैं लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, बहुत इच्छाएं आ रहे हैं, बहुत प्रभु जी काम वासनाएं आ रहे हैं बहुत सारे, ऐसे हम लोग चर्चा करते हैं। उनको सहन करना चाहिए, है कि नहीं? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वहां पर भी वेग कहा गया, वेग मतलब पुशिंग्स, प्रॉपर कभी कभी बोल देते पुशिंग्स, ऐसे दबाव डालते हैं हमें, पुश करते हैं, या वेग, तो ये वेग क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये छह वेग जो है उसको जो सहन करता है उसको धीर कहते हैं, विषहेत धीर, वो रहेंगे लेकिन क्या करना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए, तो विषहेत धीर। और वहां पर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम खंडू यने न करयोरिव दुख दुखम त्रप्यंति नेह कृपणा बहु दुख बाजम खंडूति मन मनसिजम विषहेत धीर। वो कहते हैं यन मैथुन आदि, मैथुन का जो सुख है वो क्या तुच्छ है, ग्रह मेदियों के लिए वो बहुत बड़ा मानते हैं वो लोग, लेकिन वो तुच्छ है, ग्रह मेदियों का जो मैथुन सुख है। खंडू या नहीं नखर और ऐसे दो हाथों को क्या बोलते हैं उसको, खुजलाने के समान है, ऐसे या खुजलाते हैं ना हम लोग, थोड़ा आनंद का महसूस होता है, वही है मैथुन सुख। बाद में क्या होता है, बहुत सारे पेन वहां पर शुरू हो जाता है। तो त्रप्यंति नेह कृपण बहु दुख बाजम, जो कृपण लोग है, जो जीवन में और कुछ ऊंचा उनको पता नहीं है, है ना, भौतिक जगत में पूरा संसार में दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं, यही सबसे बड़ा आनंद है, यही करना है, सब कुछ जो करते हैं वो इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, बस इधर उधर गाड़ी में भाग रहे हैं, विश्वविद्यालय में जाके सालों पढ़ रहे हैं, दफ्तर में जाके बहुत सारा मेहनत करके काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इमारत बांध रहे, रोड बना रहे, ऑटोमोबाइल बना रहे, सब किसके लिए कर रहे हैं, ताकि एक दिन हमें ये मैथुन का सुख मिल जाएगा, ऐसा सोच के कर रहे हैं। तो पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव, हम लोग कृष्ण भावना भावित हो रहे, वो लोग मिथुनी भाव में है बस। तो ऐसे लोग उसको भोगने के लिए कोशिश कर रहे तो, लेकिन कृपण लोग इसको बहुत सारे यातना या दुख सहन करने के बाद भी या अनुभव करने के बाद भी उनको ये पता नहीं चलता है कि इससे हमें मुक्त होना चाहिए, इसको नियंत्रण करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख बाजाम खंडूति वन मनसिजम विषहे तदीर। तो ये मनसिजम मन के द्वारा उत्पन्न है, ऐसे कल्पना कर रहे पहले कि हम लोगों को बहुत सारा सुख मिलेगा करके, बाद में उनको ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ मन का कल्पना है। मनसिजम जो धीर लोग है उसको सहन करते हैं, विषहेत धीर। तो ये अंतर है, हृदय में बहुत सारे इच्छाएं प्रवेश कर रहे हैं लेकिन उसको सहन करते हैं, अंत में उसको शुद्ध भी करना चाहिए। हम लोग भक्ति में क्या करते हैं, इच्छाओं को रोकते नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, या भगवान की सेवा करने की इच्छाएं जागृत, उनको हमारे भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करते हैं हम लोग। तो रूप गोस्वामी ने क्या बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। वो उत्तम भक्ति वो है जो सभी भौतिक इंद्र तृप्ति करने की इच्छाओं को शून्य बनाना चाहिए, लेकिन सभी इंद्रियों को शून्य बनाने के लिए नहीं बोल रहे, सॉरी सभी इच्छाओं को शून्य बनाने के लिए वो नहीं बोल रहे, सिर्फ इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को बनाने के लिए, शून्य बनाने के लिए बोल रहे, लेकिन इच्छाएं तो होंगे ही, वो क्या करेंगे हम लोग, वो इच्छाएं क्या होंगी, भगवान को सेवा करने की इच्छा। तो भगवान को सेवा करने की अलग अलग इच्छाएं हो सकते हैं, तो ऐसे हमारा इच्छाओं को हम लोग शुद्ध करते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाष अभिलाष शून्यम बोल दिया होता तो क्या होता था, सभी इच्छाओं को शून्य कर दो, ऐसे होता था। वो लोग मायावादी लोग और निराकारवादी निर्विशेषवादी लोग सभी इच्छाओं को शून्य बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा शून्य बनाने की इच्छा तो रहता ही है ना, समझ में आ रहा है। तो अंत में सभी इच्छाएं तो शून्य ही होंगे, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है इच्छा करना। प्रभुपाद जी इसलिए क्या कर देते हैं, हम लोग इच्छाओं को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग हमारे भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करके भगवान की सेवा करने की इच्छाओं को जागृत करना चाहिए। इता 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 शब्द वही अर्थ है, अभिलाषित इता क्या होता है, तो ऐसी अभिलाषाओं को जो इंद्र तृप्ति करने के लिए है उनको शून्य करना चाहिए। लेकिन हमें भगवान की सेवा करने की अभिलाषा तो होना ही चाहिए। मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने हरि वो सदा जुगल रूप रहा। वो अभिलाषा तो बहुत ही बड़ा अभिलाषा है वो। तो ऐसे पढ़िए उसको,
विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेष जल से भरा रहता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है, ना वे शुद्ध होता है ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। ये स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगी बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के।
तो हमें जानना चाहिए जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इच्छाएं आते रहेंगे। कभी कभी ऐसे निरुत्साही नहीं होना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, वो मुझे इच्छाएं आ रहे करके ज्यादा आ रहा है बहुत, आप कोशिश करने के बाद भी प्रयास करने के बाद भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ जो मंदिर के है ना जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका है? तो अच्छा है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करें है ना, ठीक है। लेकिन हमें जानना चाहिए अंत में क्या है, ये सभी इच्छाओं से मुक्त होना ही है। आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जगत जानना चाहिए तो इससे मुक्त होना ही है। ये गुलाब जामुन की खाने की इच्छा भी है तो यहाँ पर भौतिक जगत में आना पड़ेगा, फिर से पूरा 100% शुद्ध होना चाहिए तभी हम लोग भगवद्धाम लौट के जा सकते हैं। तो और जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक इच्छाएं आते ही रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनको पूर्ति करने करने करना चाहिए। हम उसको कभी कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, हमें भगवान हम जप करने के लिए मन नहीं लग रहा है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। मन को लगाना है, आप मन के दास नहीं हैं, मन को आपका दास बनाना है, ये भक्ति का मार्ग है कि नहीं। तो हमें जानना चाहिए। तो कभी कभी प्रभुपाद जी भी ऐसे बोलते थे, मुझे भी अपने पत्नी का याद आता है ऐसे बोलते हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके पास चले जाना चाहिए, है ना। इसलिए सन्यासी को ये बताया गया फिर से अपने जो पूर्व आश्रम में जो पत्नी थी उनको कभी नहीं मिलना चाहिए, उनसे उनके उनसे भेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नियम है सन्यासी उनके लिए, तो इसलिए ये नियम है। क्यों नियम है, ताकि हमें निर्बंधित करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए, जब तक भौतिक शरीर है वो होता रहता है। ओके कभी शांति नहीं मिलता, गर्मी, मुमुक्षु, तथा वे योगी, सिद्धि, कामी, वो श्लोक हम बता रहे थे ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नकाम कामी, जो काम का कामी है, नकाम कामी वो कभी शांत नहीं हो सकता, ऐसे बताया। काम कामी बताया गया वो कभी शांत नहीं हो सकता है। तो लेकिन वो लोग कौन कौन से है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति मतलब जो कर्मी होते हैं, भुक्ति भोग भौतिक भोग में के लिए वो हमेशा इच्छुक रहते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, मोक्ष का इच्छा करते हैं, और जो योगी होते हैं वो लोग योग सिद्धियों का इच्छा करते हैं, इसलिए वो लोग अशांत रहते हैं, कभी शांति नहीं होता। लेकिन भक्त लोग निष्काम होते हैं, इसके कारण वो शांत रहते हैं। ठीक है,
कर्मी मोक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भाव न भावित पुरुष भगवत सेवा में रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं, वस्तुतः वे तो तथा कथित भगवंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं।
विहाय कामान्य उमां शरति निस्प्रहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है और तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो क्या चार लक्षण है यहाँ पर बताइए, विहाय कामान यह सर्वान, कुमाम शरति निस्प्रह, पहला है विहाय कामान यह सर्वान, सो इंद्र तृप्ति के समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, उस सर्वान या मूल क्या है, कुमाम शरति निस्प्रह और निर्ममः, ममता त्याग दिया है, अहम मम और निरहंकार है, निरहंकार है वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद इन चारों को वर्णन करते हैं, वो निस्प्रह शब्द से लेकर पढ़िए उसको, जस्ट अ मिनट,
निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना, दूसरे शब्दों में कृष्ण भाव न भावे होने की इच्छा वास्तव इच्छा शून्यता क्या निष्प्रह है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना
तो निष्प्रह मतलब का अर्थ क्या होता है, ये इंद्र तृप्ति की इच्छा कुछ भी इच्छा न रखना, हम लोग चर्चा किया है इसको, अन्य अभिलाषिता शून्य, कृष्ण भावनामृत में ही इच्छा शून्यता हो सकता है। ऐसे आगे
जो इससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी दृष्टि के लिए किया जाना चाहता है, अर्जुन आत्मदृष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसको युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहता है कि वह युद्ध करे, उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा, वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण दृष्टि के लिए इच्छा है, वे इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं होती, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती, भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की।
तो ये निर्ममा कृष्ण की है, ईशावाशमिदं सर्वं किञ्च अधिकृत्यं, वो सब कुछ ये मेरा नहीं है, मेरा है ऐसे नहीं कहता है या
ये किसी वस्तु पे अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, ये दिव्य ज्ञान आप
तो समझ में आ गए। ममता भावना और अहंकार की भावना में क्या अंतर है? जो लोग समझते हैं ये मेरा है वो ममता भावना है, और उसके ऊपर स्वामित्व जमाना क्या है, वो अहंकार की भावना है। ठीक है, यह दिव्य ज्ञान का अर्थ साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव के शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो अंतिम श्लोक, ये शाधामी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यानंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता। एषा भ्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। तो ये ब्रह्मी स्थिति है, आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, ऐसे बोलते नैनं प्राप्य विमुह्यति। इसको प्राप्त करने के बाद कोई मोहित नहीं होता है, तो इसको ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस ब्रह्मी स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समचित्तैतान ब्रह्म भूय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो आठवें अध्याय के आरंभ में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म उच्चते, ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है, इसके बारे में पूछा। तो अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्चते, अक्षरम परमम ब्रह्म, द ट्रांसेंडेंटल एटर्नल लिविंग इंडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड एज ब्रह्म एंड हिज एटर्नल नेचर इज कॉल्ड एज आध्यात्म। उसका स्वभाव क्या है, वो आध्यात्म है। सो जीवात्मा का वह एटर्नल नेचर वो आध्यात्म है, लेकिन इस भौतिक जगत में हमारा जो अस्थाई स्वभाव जो रहता है तीन गुणों से हुआ, वो आध्यात्मिक नहीं रहता, वो भौतिक रहता है। दोनों अलग है, पूरी तरह से अलग है पूरा। ऐसे यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति, उसको प्राप्त करने के बाद नैनम प्राप्य विमुच्यति। तो ऐसे स्थित होके स्थित्वास्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणं गच्छति, तो अंत काल में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत का ये दिव्य जीवन या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यदि तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है, यह तो हमें सत्य समझ के उसको स्वीकार करना की बात है। तो इसलिए ये सब शास्त्रों के जो विषयों को बहुत गहराई से समझना चाहिए हम लोग। तो समझ लिया तो गहराई से समझ लिया तो मतलब भगवद गीता और भागवत के जो विषयों को गहराई से समझना चाहिए, गहराई से समझ लिया तो एक क्षण में हम लोग कृष्ण भावना पा और शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद खटवांग महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। तो अंतिम क्षण में क्या किया उन्होंने, भगवान को स्मरण किया। तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा, अंतिम समय में एक व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसके क्या जिम्मेदारियां हैं, ऐसे जब प्रश्न पूछा उन्होंने, तो वो इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, ग्रामीण जीवन की तरह नहीं होना चाहिए, और भौतिक संसार के विषयों में लिप्त नहीं होना चाहिए, और भौतिकवादी स्त्री पुरुषा पत्नी उनका आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए, विश्वास करके भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, हरे नामान कीर्तनम ऐसे वो कहते हैं। और उसके बाद में खटवान महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया, खटवान महाराज ने सिर्फ एक क्षण में भगवान को स्मरण किया और भगवान के धाम वापस चले। उनको वो देवी देवताओं के ओर से असुरों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय युद्ध खत्म हो गया। फिर उन्होंने पूछा मेरा और कितना आयु है, देवी देवताओं ने उनको पूछा पहले कि आपको कुछ भी चाहिए तो ले लीजिए, मांग लीजिए, क्या चाहिए, वर चाहिए आप। तो फिर खटवान महाराज ने पूछे कितना समय है मेरे जीवन में, एक क्षण है ऐसे बोल, तुरंत ही वो भगवान के ऊपर स्मरण करने लगे और अपना शरीर को त्याग करके चले गए भगवान के पास। तो ये खटवान महाराज है। तो अभी प्रश्न उठता है, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या हम लोग जीवन पर कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसे भौतिक संसारिक कार्य करेंगे या भोग में लिप्त हो जाएं, पाप कर्म करेंगे, अंत के एक क्षण में मैं स्मरण कर दूंगा ना, खटवान महाराज के जैसे यहाँ पर ऐसे ही बताया गया ना, ठीक है ना, अंत काले पे ऐसे बताया गया। लेकिन इसके पहले क्या हो गया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ब्रह्म नैनम प्राप्य विमोहति स्थित्वास्य कहा गया। ऐसे ब्रह्मी स्थित में स्थित होने के बाद ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद है बोलते हैं वो हो सकता है, लेकिन उसको गहराई में समझना और स्वीकार करना भी चाहिए ना, उसके लिए भी समय चाहिए कि नहीं। और अंत में क्या रहे, ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति, ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति का अर्थ क्या है, तो भगवान के धाम वापस जाएंगे। निर्वाण शब्द ये बौद्ध धर्म का जीवन का लक्ष्य है, ये निर्वाण। निर्वाण उनके अनुसार क्या है, सभी भौतिक कार्यों को अंत कर देना, शून्य बना देना, उनको कोई आध्यात्मिक कार्य के बारे में कोई पहचान नहीं है। तो निर्विशेषवादी भी ऐसे ही है थोड़ा, ब्रह्म सत्य जगन नित्य, तो जगत क्या है, नित्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए ऐसे वो लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं वास्तविक जीवन तो निर्वाण के बाद आता है, ब्रह्म निर्वाण के बाद आता है, भौतिक कार्यों को अंत करने के बाद वास्तविक कार्य आरंभ हो जाते हैं, वहाँ पर भक्ति के कार्य आरंभ होते हैं। तो दूसरे शब्दों में बहुत सारे लोग मुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, और हम उस दिन चर्चा भी कर रहे थे ना, लोग वो न्यूज़पेपर में वगैरह वो लिखते हैं लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म लीन ऐसे वो उनको एक टाइटल भी देते हैं और वो ऐसे वर्णन करते हैं। तो उनके वो लोगों को भारत में आप देखिए सबको मुक्ति शब्द क्या है, सामान्य शब्द है ये, सब लोग मुक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुक्ति के बाद क्या होता है उनके बारे में, उसको बारे में उनको पता नहीं है। मुक्ति के बारे में बाद में भी कार्य होते हैं, वहाँ पर भी आए भगवान का धाम है, वहाँ पर नित्य लीलाएं चल रहे हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि सब निर्विशेषवाद और शून्यवाद सब जगह फैला है ना, इसके कारण किसी को पता नहीं है। तो ये भी हमें समझाना चाहिए लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है हमारे दर्शन शास्त्र का, है ना। तो ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान के धाम वापस जाना, तो वो अर्थ है। तो पढ़ लीजिए उसको,
मनुष्य जीवन का उनके जीवन को एक क्षण का प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि इसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवान महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन व्यवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष होगा, किंतु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना धारित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। नंबर दाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पर हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। उसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। अब जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ब्रह्म स्थिति कारण है भौतिक कार्यों की पत्र न होना भगवत गीता में अवस्था माना गया है। विषय के रूप में भगवद्गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। द्वितीय अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी शांति दे दी गई है।
कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? भौतिक जगत में इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और आध्यात्मिक जगत में भी वो ही वैसे ही है, लेकिन भौतिक जगत में मन क्या है? भौतिक मन होता है। तो उसका जैसे साधारण दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, आपका मन विचलित है तो आप क्या, बहुत सारा चीज होने के बाद भी, स्थूल चीज होने के बाद बावजूद भी, सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी आप सुखी नहीं रह सकते, है कि नहीं? आपके मन शांत है, शुद्ध है, तो कोई भी स्थिति में आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, है कि नहीं? और इसका दूसरा शब्द में जब वी आर असेंडिंग, क्योंकि यहाँ पर मन के बारे में बात कर रहा है ना, तो मन शुद्ध है तो शांति मिलेगा, शांति शुद्ध शांति मिलने के बाद सुख मिलेगा। तो वी गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल एंड दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु हैज अचीव्ड समाधि। तो उसके मन शांत रहता है, उसका मन आनंद में रहता है ना। सेवा ठीक से करो ना, क्यों गुस्सा होना चाहिए उसको? सेवा ठीक तरह से करना चाहिए, क्यों ठीक तरह से नहीं करना चाहिए? ठीक तरह से क्यों नहीं करना चाहिए उसको? सेवा को क्यों नहीं हो पाती वो? करना चाहिए।
बदलता
और सूक्ष्म शरीर एक जैसे रहता है, ऐसा पूछ रहा है? नहीं, हम लोगों ने बहुत चर्चा किया ना उसको, जैसे सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर को बनाया जाता है ना। यम यम वापी स्मरण भाव, मतलब अगले आपका क्या जीवन होगा वो स्थूल शरीर पहले उस रूप को धारण करता है, उस रूप में बदलता है, उसके आधार पर क्या है ये स्थूल शरीर को बनाया जाता है। या वो भी जनरली सामान्यतः क्या होता है, जो ईथर है वहां पर रूप रहता है, इथेरियल फॉर्म्स। तो लेकिन उसका आधार वो मन भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, क्योंकि उससे उसका रूप उसकी चेतना के अनुसार वो रूप होता है ना। लेकिन वो हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि जैसे क्यों, हम लोग ऐसे कहते हैं कि मन नहीं बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है, कैसे कहते हैं हम लोग, एक्चुअली मन तो बदलता ही है ना, मन को बदलते हैं ना। तो लेकिन स्थूल रूप से वो दिखाई नहीं पड़ता, इट इज नॉट मैनिफेस्ट, दैट चेंज इज नॉट मैनिफेस्ट ऑन अ क्रॉस लेवल। जैसे हम लोग देखते हैं शरीर बदलता है वो पूरा प्रकट है, लेकिन मन बदलता है लेकिन उसको प्रकट नहीं होता है, लेकिन मन भी बदलता है वास्तव में एक दृष्टिकोण से, है ना। हम लोग जब कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर कभी बदलता है नहीं, जब मुक्त हो जाते हैं तब उसको त्याग देते हैं हम लोग, लेकिन वो भी बदलता है ना, मन बदलता है कि नहीं बदलता, नहीं तो वो मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, एक ही समान रहता है। मन भी बदलता है, बदलना चाहिए उसको, ठीक है। वही मंत्र है, मंत्र मन को हारने वाला, लेकिन वो सूक्ष्म है। वो कैसे होता है, मन भौतिक चीजों से प्रभावित रहता है, उससे उसको अलग करते हैं हम लोग। मन त्रायते इति मंत्र, त्रायते मतलब फ्री, उसको शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ये भौतिक तत्व है उसको हम लोग त्याग देते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, समझ आ रहा
है,
प्रभाव के कारण। और कुछ दो कथाएं हैं उसका, अलग अलग कथाएं, वो अलग अलग है। कभी प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करते थे धीर के लिए, धीर कौन होता है, जब विचलित करने वाली चीजें होती है तब भी विचलित नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, अभी आप यहाँ पर बहुत सारे स्त्रियां बैठे हैं फिर भी आप विचलित नहीं होते, उसको धीर कहते हैं। आप प्रयास मत करो और परीक्षा मत करो, हम धीर है क्या अधीर है करके दूरी रखो। तो उसके लिए भी वो उदाहरण देते हैं। और कुमार संभव, कुमार का तो जन्म हुआ ना, लेकिन वो कैसे हुआ फिर, उसके कारण दोनों सही है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया जाता है, ठीक है। पुराणों में बहुत सारे ऐसे कथा, एक ही कथा अलग अलग दृष्टिकोण से बताया जाता है, और एक ही कथा से बहुत सारा चीज भी हम लोग सीखते हैं ना। और कुछ ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We are going slow. Mm-hmm.